पृष्ठ संख्या 20। उरुभंग नाटक की कथा का मूल आधार महाभारत है। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का वर्णन मिलता है। भीम दुर्योधन की गदा के प्रहार से मूर्छित हो जाता है, किंतु सहसा उठकर भीम उस पर आक्रमण करता है। वह बचने के लिए उछलता है। अवसर पाकर भीम जंघा पर प्रहार कर उसे तोड़ डालता है। भूमि पर गिरते ही लात का प्रहार कर भीम उसका अपमान करता है। कतिपय परिवर्तन के साथ इस कथा को एक अंक के प्रशस्त के रूप में बड़ी कुशलता के साथ वस्तु योजना कर निबद्ध करते हैं। दुर्योधन के उरुभंग कथानक पर ही यह केंद्रित है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और दुर्योधन की जांघ को तोड़ने का संकेत प्राप्त कर भीम के प्रहार से वह गिर जाता है। व्यास और विदुर के साथ बलराम भी दर्शकों में उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन की पत्नियां भी वहां उपस्थित हैं। हस्तिनापुर की यह घटना है युद्ध भूमि की नहीं। दुर्योधन श्री कृष्ण के प्रति क्रुद्ध नहीं है। वह अपने कृत्य के लिए दुखी और बलराम के क्रोध करने पर वह कहता है, मेरी उपस्थिति में मेरी अपेक्षा कर भीम ने मर्यादा के विरुद्ध दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार कर उसे गिरा दिया है। मैं इस अनीति को सहन नहीं करूंगा। भीम का वक्षस्थल विदीर्ण कर इसका फल दूंगा। इस प्रसंग में दुर्योधन कहता है, भगवान, भीम ने युद्ध मर्यादा पर ध्यान न देकर जंघा पर गदा का प्रहार कर गिरा दिया है। मेरा शरीर अब जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप प्रसन्न हो, भूमि पर पतित मेरे इस मस्तक का प्रमाण स्वीकार करें। क्रोध शमन पर कुरुकुल में जलांजलि के लिए पांडवों को जीवित रहने दें। वैर की अब आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब समाप्त हो चुके। बलराम ने कहा, तुम क्षण भर के लिए जीवन धारण करो, मैं पांडवों का संहार कर तुम्हारी स्वर्ग यात्रा में सहायक बन सकूं। गुरुदेव, भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी। मेरे सभी भाई मारे गए। मैं अंतिम क्षण में की प्रतीक्षा में हूँ। अब युद्ध से क्या लाभ? बलराम ने कहा कि मेरे सम्मुख भीम ने छल से तुम्हें मारा। इसका मुझे दुख है। यदि आपको यह विश्वास है कि मैं छल से मारा गया हूँ, तो मुझे पूर्ण संतोष है। मुझे तो क्षीर सागर शायी पारिजात हरणकर्ता लोकप्रिय भगवान श्री कृष्ण ने भीम की गदा में प्रविष्ट होकर काल का ग्रास बनाया है। धृतराष्ट्र और गांधारी का आगमन होता है। प्रलाप के साथ दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन वीरोचित सांत्वना देता हुआ पत्नियों को अपना महत्व ख्यापन करता हुआ साहस प्रदान करता है। पुत्र दुर्जय को उपदेश देते हुए कहता है कि प्रशंसित श्री अभिमानी दुर्योधन तुम्हारा पिता है। यह सोचकर तुम दुख का त्याग करो। अश्वत्थामा का आगमन होता है और उसकी उत्तेजनापूर्ण बातों को सुनकर वह उनको विनयपूर्वक समझाता है। अश्वत्थामा यह कहता है कि आज रात्रि में रणरचना कर पांडवों को समाप्त कर दूंगा। महाप्रयाण की यात्रा का आरंभ एवं विचरित मुनिजन तपोवन में धृतराष्ट्र का प्रस्थान होता है। पृष्ठ संख्या 22। दूतवाक्य। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। उत्तरा और अभिमन्यु का परिणय हो चुका है। पांडवों का प्राप्य दिलाने के लिए श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दौत्य कार्य संपन्न किया है। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के आगमन पर राजसी स्वागत की तैयारी की, किंतु श्री कृष्ण कुंती के पास गए, दुर्योधन से मिले। उसके द्वारा प्रीति भोज को अस्वीकार कर विदुर के घर रात्रि व्यतीत की। विदुर के साथ राजसभा में उपस्थित हुए। दाय भाग देने का प्रस्ताव किया, किंतु दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। गांधारी ने भी बात मानने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा को धृतराष्ट्र ने रोका। महाभारत की कथा को अपनी प्रतिभा से मिश्रित कर उपस्थित किया है। धृतराष्ट्र के स्थान पर दुर्योधन राजा है। कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सक्रिय चेष्टा उपलब्ध है। माता गांधारी की बात की उपेक्षा कर सभा का परित्याग कर देता है। रंगमंच पर शरीरधारी शस्त्रों की अवतारणा महाकवि की प्रतिम उद्भावना है। इस नाटक का कथोपकथन सरस और ग्राह्य है। साहित्य की द्वारा अपने बंदी बनाने की बात ज्ञात कर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं, जिसको देखकर दुर्योधन मूर्छित हो जाता है। इस प्रसंग में नाटकीय स्वरूप अपूर्व है। भास राज सिंह के एकच्छत्र राज्य की कामना इसके भरत वाक्य से करता है। इसमें पुरुष पात्र का बाहुल्य है। यह रूपक के भेद व्ययोग के अंतर्गत है। श्री गणपति शास्त्री ने इसका प्रधान रस धर्मवीर माना है और श्री कृष्ण को नायक माना है। फल प्राप्ति दुर्योधन को होने से इस रूपक का नायक दुर्योधन को माना है तथा वीर रस माना है। पंचरात्र पंचानाम रात्रीणाम समाहारः अथवा पंचरात्रमस्ति विषयत्वे नास्य। इस विग्रह के अनुसार पांच रात की घटनाओं के वर्णन से प्रस्तुत यह नाटक है। कुरुराज दुर्योधन एक वृहत यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण से दक्षिणा स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है। द्रोण पांडवों के लिए आधे राज्य को देना ही अपनी दक्षिणा के रूप में मानता है। अस्वीकृति की मुद्रा से द्रोण क्रुद्ध हो जाते हैं। शकुनी के विचार से पांच रात्रि के अंदर पांडवों का पता लगने पर राज्य का अर्धभाग देने की स्वीकृति देता है। यह रूपक 3 अंक का है। इस रूपक की कथा महाभारत के विराट पर्व से ली गई है। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान होने पर भीम ने कीचक का वध कर दिया था। कौरवों ने रुष्ट होकर विराट पर आक्रमण किया और उसके गोधन को हरण किया। पृष्ठ संख्या 23। महाकवि ने इसी कथा को नाटकीय शैली के द्वारा रोचक एवं परिपुष्ट कर प्रस्तुत किया है। सुई के अग्रभाग को भी न देने वाला नाटककार का दुर्योधन गुरु की आज्ञा से आधा राज्य देने को तत्पर है। इस नाटक में महाकवि ने अपनी प्रतिभा के आधार पर निम्नलिखित परिवर्तन के द्वारा इसकी प्रेषणीयता में मणिकांचन संयोग प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम, महाभारत में दुर्योधन के यज्ञ की चर्चा नहीं है। महाकवि की यज्ञ की कथा ने अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। द्वितीय, यज्ञ का प्रधान आचार्य द्रोण को बनाया गया है तथा यज्ञ की समाप्ति पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को दक्षिणा के लिए आग्रह करता है और आचार्य पांडवों को अर्धराज्य दिलाने के रूप में आग्रह पूर्वक दक्षिणा स्वीकार करते हैं। आचार्य अपने आचार्यत्व का इस दिशा में प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग ने नाटक में एक अपूर्व समन्वय प्रदर्शित किया है। तृतीय, शकुनी द्रोणाचार्य की दक्षिणा को प्रवंचना कहता है, उसका विरोध करता है। अंत में 5 दिनों में पांडवों की प्राप्ति के साथ राज्य का अर्धभाग देने की स्वीकृति देता है। चतुर्थ, अभिमन्यु विराट नगर में अत्यधिक पराक्रम प्रदर्शित करता है। इस प्रकार रूपक में अतिशय मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि ने कथा वस्तु को अपूर्व सरसता से मनोग्राह्य कर दिया है। बाल चरित, इस रूपक में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का समायोजन है, इसीलिए इसका नाम बालचरित रखा गया है। इस रूपक में श्रृंगार की घटनाओं का सर्वथा अभाव है। श्रृंगार के बिना बाल लीला यह भास की प्रतिभा से ही संयोजित हुआ है। राधा का भी प्रवेश इसमें नहीं हुआ है। यह रूपक 5 अंकों में संपन्न होता है। इस नाटक की कथा का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत एवं महाभारत के हरिवंश एवं पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण कथा है। कथा वस्तु को नाटकीय स्वरूप प्रदान करके अपनी काव्य प्रतिभा, कल्पना एवं मौलिक उद्भावना के साथ अतिशय रोचक शैली में प्रस्तुत करते हैं। भास ने गोप की पुत्री को मृत दिखाकर एक अपूर्व वैशिष्ट्य समाहित किया है। मृत पुत्री को परित्याग करने वाला पुत्री के स्थान पर दैव गति से पुत्र को प्राप्त कर ले, इसे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी। श्वास गति के अवरोध से मृत घोषित की गई, यदि श्वास संचार से पुनः जीवित हो गई तो योग माया के लिए क्या आश्चर्य है। वासुदेव और नंद बाबा की वार्ता भी नाटक में एक विशिष्ट स्थान रखती है। नाटककार की दृष्टि में कृष्ण सातवें पुत्र हैं, आठवें नहीं। नाटक की दृष्टि से कथा में क्रम भेद भी किया गया है। श्री कृष्ण का नंद को समर्पण के समय रात्रि का पर्यावसन है। मथुरा में आगमन के साथ सभी निद्रा निमग्न हैं। गोप कुमारियों को श्री कृष्ण के पराक्रम के विश्लेषण के प्रसंग में अपनी कल्पना को अतिशय चमत्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ यह रूपक एक अनूठा और अतिशय चमत्कृति संपन्न है।